मतलब कहने का यह है कि आपके ये जो दो तीन काम थे शायद मे बी योर डाउनफॉल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट. तो कहने लगे नहीं, हमने जो भी उस वक्त सोचा वो सही सोचा. जो बलोचिस्तान में भी मैंने कहा कि आपको लगता है आपने सही किया, कहते हैं स्टेट विद इन द स्टेट. ये बात मैं उनकी बिल्कुल वैसे अग्री करती हूँ. वो कहते हैं स्टेट विद इन स्टेट नहीं होनी चाहिए, है सिर्फ एक ही स्टेट होनी चाहिए
100%
और उसकी ही रिट होनी चाहिए
100%. तो आई एग्री विद 100%.
हाँ हाँ, तो मुशर्रफ साहब की जो है ना वो मुझे आपकी बात कहते हैं आप जर्नलिस्ट जो है ना ट्विस्ट कर देते हैं चीज को, इधर से इधर इधर कहीं ले जाते हैं. जिसके साथ आपका दिल होता है उस एट दैट मोमेंट उसके साथ खड़े हो जाते हैं आप लोग.
उन्होंने आपको मौलवियों के साथ ही बता दिया.
मौलवियों के साथ ही कहते हैं आज मुझे पता चला आज मौलवियों के साथ खड़ी है. मैंने कहा नहीं सर, मौलवियों के साथ तुम कभी भी नहीं दे सकते.
ओ ऐसी बात ना करें. हमारे साथ जाए हैं वो ऑफ कोर्स.
नहीं नहीं, वो मौजूद भाई के साथ जाए.
हमारे साथ जाए हैं
बिल्कुल. मजदे का बड़ा प्यार है. ये जो लिफाफे आप देखते हैं मजदे भाई की जेब में बहुत सारे, ये भी आते हैं कोई और सोर्सेज है. कोई मौलवी सोर्स होगा जरूर. अब तो मुझे शक हो रहा है मजदे भाई.
नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है.
ऐसी बात नहीं है.
हमको अल्लाह सुब्हान तआला इतना बनाए कि भाई हम उनको दे सके.
हाँ, नहीं नहीं, लेकिन ये सोर्स क्या है मजे भाई, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा ये लिफाफों का सोर्स क्या है, ये बताएं आप.
लिफाफे मेहनत के लिफाफे हैं ये. ये सारे लिफाफे मेहनत के.
ये किस तरह से उगते हैं मुझे भी बताओ. मैं भी जाना चाहती हूँ मजे भाई.
मेहनत कीजिए आपको भी मिलेंगे लिफाफे. ये
अच्छा अच्छा,
आज खाली है सॉरी.
इसका मतलब आज आपका बैंक अकाउंट भर गया है.
आज बैंक अकाउंट
इसलिए कि आज आपके जेब में नहीं है वो लिफाफे. अच्छा अच्छा, वेरी गुड. ओके ओके महेश भाई, चलो कहानी पाइए जी. हमारी वेबसाइट जो है बिल्कुल अप एंड रनिंग है जनाब. तो कल थोड़े से कुछ खराबियां होगी थी क्योंकि हमने आपको बताया ही है कि हम तो FBI CIA उनके साथ खड़े हुए हैं ना, पेंटागन के साथ. तो हमारी भी हैक हो जाती है वेबसाइट. बहरहाल जी, अब उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, तरस खा लेते हैं. आप तरस खा लिया तो हमने उसको अप एंड रनिंग कर दिया. आप देख सकते हैं लाइव रेडियो, टीवी, फिर ब्रेकिंग न्यूज, उर्दू की खबरें, फिर लोकल न्यूज आप देखेंगे और हेल्थ की खबरें आपको बहुत सारी मिलेंगी. मेडिसिन क्या क्या कुछ नई आ रही हैं, लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है वो आप देखेंगे. और यूथ जोन में एज एंड वेन हमारे पास स्टोरीज आती हैं हम डालते हैं, जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं. एंड फिर कनाडा की न्यूज और स्पोर्ट्स न्यूज हमारे पास आती हैं. आप जरूर ये फॉलो करें स्पोर्ट्स की न्यूज खासतौर पर, क्योंकि जो कनेडियन बहुत सारे जो है ना एथलीट माजिद भाई पैरालंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स ले रहे हैं वो. तो ये आप जरूर करें फॉलो. अच्छा, राइट साइड पर आपको नजर आएंगे हमारे जो है वो एडवर्टाइजर्स, तो प्लीज आप इनको भी थोड़ा सपोर्ट करें. ठीक है जी जनाब. तो हम आपको बताते हैं अपने पहले जो एडवर्टाइजर हैं और इनका पैगाम भी हम आपको देते हैं. ये हैं जस्टिन जेम्स जी. हम आपको रोज ही बताते हैं कि अगर आपको अच्छा घर चाहिए, पीस ऑफ माइंड के साथ चाहिए, ऐसे आदमी से चाहिए जो कि आपको धोखे ना दे, तो जस्टिन जेम्स जी के साथ आप कॉन्टैक्ट करें. इनका नंबर है 6476886931. आपको कुछ भी चाहिए, दो टू लेवल कॉन्डो, डिटैच्ड होम, सेमी डिटैच्ड होम, तो आप जो है इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जस्टिन जेम्स जी से. इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं अब जो है ये सिंपली फाइनेंशियल के बारे में. तो सिंपली फाइनेंशियल जो है वो कहते हैं अगर आपको किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट का पता है जो आ रहा है यहाँ पे, तो आप उसको इनकी डिजिटल बैंकिंग के बारे में बता सकते हैं. और आपको भी मिल सकता है $50 का एक वाउचर. और आप इनको कर सकते हैं विजिट ऑन www.simply.com/ISBO, दैट इज www.simply.com/ISBO. इसके अलावा अगर आप किसी न्यू कवर को जानते हैं कि वो कनाडा में आ रहा है, तो उनको भी जरूर बताइए सिंपली फाइनेंशियल के बारे में. और उनसे कहें कि आने से पहले ही आप अपना बैंक अकाउंट जो है खोल सकते हैं. और आप जब बैंक अकाउंट खोलेंगे तो आपको मिलेंगे $200 का बोनस और $10,000 वाला क्रेडिट कार्ड लिमिट उसकी इतनी रहेगी. और जो उसको रेफर करेगा उसको भी $50 मिलेंगे. तो आप इनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कर लें www.simply.com/new2canada या के www.simply.com/new2canada.
एक मैं बताता चलूं आपको, न्यूक्लियस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन साहब, यहां पर अपने बच्चों को डॉक्टर बनवाइए. पांच साल में जो लोग जो बच्चे जो हैं ग्रेड 12 कंप्लीट करके इनके पास आएंगे तो वो उनको 5 साल में डॉक्टर बनवा देंगे. और जो बच्चे BSc के सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं वो 4 साल में बन सकते हैं. पहला साल प्री मेडिकल का राइट हियर इन टोरंटो और 2 साल इन अरूबा एंड 2 साल बाल्टीमोर USA. क्लिनिकल रोटेशन इन जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल के एफिलिएट्स के साथ. और अगर आपके कोई रिश्तेदार बहन भाई या उनके बच्चे जो हैं अगर मिडल ईस्ट में है, इंडिया पाकिस्तान में है, तो या दुनिया में कहीं पर भी है, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो सारा इंतजाम ये करके देंगे। न्यूक्लियस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से आपने कांटेक्ट करना है, 416-910-8750 इनका फोन नंबर है, 416-910-8750 इनका नंबर है, इनसे फर्दर डिटेल आप हासिल कर सकते हैं, या इनकी आप वेबसाइट पर चले जाइए www.newsom.org पे आप जाके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जी सर, वेलकम बैक अगेन। एंड अब चलते हैं हम शाज़ मलिक की जानिब और पूरी की पूरी तमाम ताज़ा तरीन खबरों की जानिब, पाकिस्तान हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इसके साथ साथ राइट हियर इन टोरंटो कनाडा में बहुत कुछ हो रहा है, आज डिबेट भी है, उसके मुताबिक बात करेंगे। शाज़िया मलिक जी,
जी हाँ जी, महेश भाई वही, जैसे आपने अब डिबेट से शुरू किया तो डिबेट से ही हम शुरू कर लेते हैं। तो आज फर्स्ट टीवी डिबेट है इनकी, टीवी ए के ऊपर, तो ये जो है क्यूबेक में बड़ी पॉपुलर है, लेकिन इसमें मजे की बात ये है कि सिर्फ चार ही जो लीडर्स हैं उनको बुलाया है, एक जस्टिन ट्रूडो साहब को बुलाया है, एरन ओटूल साहब को, और जो है ब्रांशे साहब और जगमीत सिंह को। ये जो ग्रीन पार्टी की है एनमी पॉल और जो के मैक्सिम बर्नियर है पीपल्स पार्टी से, उन दोनों को नहीं बुलाया है।
उसकी वजह ये भी है ना, हमेशा से ये सवाल आता है जब भी डिबेट होती है, जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें यू हैव टू हैव मिनिमम ऑफ सो मेनी सीट्स। अगर आपके पास उतनी सीट्स हैं तो यू आर एलिजिबल टू कम देयर, अगर आपके पास उतनी सीट्स नहीं है तो दे कैन नॉट हैव लाइक सेवन और एट गाइज। यहाँ पर आपको पता है कि कम से कम 38 डिफरेंट पार्टीज हैं जो रजिस्टर होती हैं इसमें, तो अब हर एक को तो इन्वाइट नहीं कर सकते ना वो, तो उन्होंने एक कानून बना लिया है, एक पॉलिसी बना ली है कि भाई हम इतने लोगों को जिनके पास इतनी सीटें हैं उन लोगों को एलिजिबल करेंगे कि वो आके यहाँ पर अपने तासुरात दें।
जी ठीक है, तो ये लोग आएंगे, और आपको पता ही है कि लास्ट टाइम जो है ट्रूडो साहब की जो विन थी वो इतनी कुछ पॉजिटिव ना नजर आ रही थी, ना लग रहा था कि ये शायद जीत सकते हैं, लेकिन एंड्रयू शीयर साहब का वो जो डिबेट थी ना जिसमें उन्होंने कहा था कि आई एम एंटी अबॉर्शन, अगर आपको याद होए, तो उस चीज ने सारा जो था पांसा पलट दिया था। तो ये डिबेट्स जो हैं इस लिहाज से जो हैं हमेशा बड़ी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, और फिर जो उनके व्यूज थे मेडिकल असिस्टेंस डाइंग के ऊपर, तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं लोग बहुत
ज्यादा, इस दफा खास इंपॉर्टेंस है शहजाद जी, उसकी वजह ये है कि पहले तो ये रैलीज निकाला करते हैं ना, तो इस दफा कोई रैलीज
टाइम ही नहीं था इनके पास,
इनके पास ना टाइम है ना रैलीज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोविड की वजह से कोई रैलीज भी नहीं कर रही है। तो अब इनके जो ख्याल हैं और जो जिस तरीके मुल्क को लेके चलना है, तो वो यही मौका है, दो मौके, एक जो आज फ्रेंच की डिबेट है और इसके बाद जो इंग्लिश की डिबेट है, उसमें लोगों को पता लगेगा कि इन लोगों के, और कई मेरा ख्याल है कि अभी तक भी सम 28% जो है लोग अनडिसाइडेड है, तो उन लोगों को ये खींचना इस तरफ बड़ा आसान हो जाता है।
बिल्कुल जी, ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी, एरन ओटूल साहब ने आज बड़ा ही क्लियरली अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बेसिकली जो है आज उनका फोकस था, और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं और जो फ्री ट्रेड के जो टाइज हैं उनको हम क्लोज करेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के साथ, इनके साथ हम करेंगे, और हमने इन्होंने प्रपोज की एक डील कैनजुक जो डील है, और वो कहते हैं इससे हम जो अपने जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हम कट कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने इंडिया का नाम लिया है, उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हमको अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, और चाइना को उन्होंने बड़ा खींचा, उन्होंने कहा कि चाइना के साथ हमको बिल्कुल इतनी ज्यादा मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो ट्रूडो गवर्नमेंट ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ जो था ये एक डील बनाई थी, तो इस डील बनाने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें फिर क्या चाइना करता है कि ये जो है थ्रू फाइनेंसेस जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो हम इस डील के ऊपर बिल्कुल खुश नहीं है, तो हम ये डील जो है बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने फिर और भी बातें की कि हमारे लेबर स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, और वो कहते हैं कि चूंकि चाइना जैसे कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स हमारे साथ नहीं मिलते हैं, तो हमको उनके साथ इतना ज्यादा ज्यादा जो है दोस्तियां बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज बड़ा एक मजे का वाकया हुआ। ये जो जगमीत सिंह साहब की वैन है ना, वो ऑरेंज से कलर की, वो ऑरेंज वैन वो मॉन्ट्रियल जा रही थी, तो एक वो पिट होल आ गया, तो उसके अंदर वो उस ऐसे वो खड्डे में वो ऐसे गिरी, तो खड्डे में जब गिरी तो उसमें उनका जी एक टायर निकल गया, तो जहां पे उनको आगे पहुंचना था वो बहुत लेट पहुंचे। असल में ये इनका फूड ट्रक है, ये फूड ट्रक है, इसके ऊपर उनकी तस्वीर बनी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है पंजाबी पुटीन। वो कहते हैं कि सिर्फ पुटीन तुम गोरों की नहीं होती, हमारी पंजाबियों की भी होती है। तो ये जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी वैन थी, तो वहां पे लोग फिर काफी जमा जमा हो गए जब तक वो टायर करता रहा। बहरहाल वो टायर शायर चेंज करने करने में आगे जाने में इनको जो है तकरीबन दो घंटे लेट हो गए और ये वहां पे पहुंचे। लेकिन ये लोग बड़ा वहां पे इंटरेस्ट से जो है ये पूरा ऑरेंज उन्होंने पेंट किया हुआ है ट्रक और अपना, और उसके ऊपर जगमीत सिंह का नाम है और फिर ये पुटीन वो लेके वो हैं, तो वो आज लोगों ने इस चीज को बड़ा किया। अच्छा, कंट्रोवर्सी जरा शुरू हो गई है किचनर सेंटर में लिबरल जो कैंडिडेट हैं राज सैनी उसके लिए। सीबीसी की थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि ये जो अपना फीमेल स्टाफ है उनके साथ बहुत बुरे से ये ट्रीट उन्होंने किया है और बहुत ज्यादा इनके ऊपर जो है एलिगेशन आए थे। अच्छा, इसमें जब ट्रूडो साहब वहां यहां पर पहुंचे हैं कल, जब अपना वो प्लेटफॉर्म जिस वक्त वो लॉन्च कर रहे थे, तो उस वक्त भी इनसे पूछा गया और अब भी लोग इनसे सवाल कर रहे हैं ट्रूडो साहब से कि आपका भाई क्या ख्याल है, ये आदमी एक जो आपका कैंडिडेट है और ये इसके ऊपर सारे एलिगेशंस आ गए हैं मिस अप्रोप्रिएशन के और बैड बिहेवियर के अपने स्पेसिफिकली फीमेल स्टाफ से, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी मेरी राज सैनी से बड़ी क्लोजली गुफ्तगू हुई है और मैंने उनसे पूछा है, वो कह रहे हैं जी हम सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों को बहुत ये एतमाद देना चाहता हूं कि जो लिबरल पार्टी है वो इन चीजों को बहुत सीरियसली लेती है, लेकिन हमने देखा है कि उन्होंने अपने जो है पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं। मीनवाइल जो राज सैनी है उन्होंने भी इस चीज को डिनाई किया, उन्होंने कहा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने फीमेल स्टाफ को बुरे तरीके से ट्रीट किया है। तो ये सिर्फ जो है एलिगेशंस हैं और भारत जो पार्टी भी है हमारी इस चीज को बहुत सीरियसली लेती है। तो लोगों ने कहा कि भाई पता नहीं ट्रूडो साहब जो हैं इनको क्यों डिफेंड उन्होंने किया है, लेकिन शायद इसके अंदर कोई इतनी सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि फिर सैनी साहब ने कहा कि अगर इतनी सच्चाई होती तो वो लड़की सामने आती और वो जब कोर्ट में जाती और फिर ये तो वो तो उसने तो वो तो पीछे हट गई है फिर जिसने आपको कंप्लेंट्स की हैं। सीबीसी का कहना है कि हमको एक सोर्स से कंप्लेंट नहीं आई है, हमको चार सोर्सेज से आई है। तो राज सैनी कहते हैं कि मुझे तो किसी चार सोर्सेज का नहीं पता चला, मुझे तो कोई एक ही बताया था कि शायद आपने शाउट किया या कुछ ऐसे किया है, तो उसमें जो है मैंने सारे जो है वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं और ये हुआ। तो बहरहाल एनीवेज ये काफी जो है कंट्रोवर्सी एक जो है वो सामने आ गई है। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है पोल सामने आया है, एंड दिस इज डन बाय इक्वल वॉइस। ये एक एनजीओ है जो कि फीमेल्स के ऊपर और जो होते हैं जो माइनॉरिटीज होती हैं, जो जेंडर डाइवर्स जो होते हैं कैंडिडेट्स, उनके बारे में जो है ये काफी नंबर्स देते हैं। अच्छा, इनके मुताबिक इस दफा जितनी भी पांच पार्टीज हैं मेन, उसके अंदर जो है फीमेल कैंडिडेट्स और जेंडर बेस्ड जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, एंड दे मेक तकरीबन जो है वो कह रहे हैं कि 43% ऑफ ऑल नॉमिनीज, और जो कह रहे हैं कि दिस इज शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 42% फ्रॉम 2019 फेडरल इलेक्शंस। वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स और जेंडर बेस्ड जो कैंडिडेट्स हैं वो एनडीपी में है, 52% ऑफ 175 जो कि 2019 से 49% अप है। ब्लॉक क्यूबेकवा में सेकेंड सबसे बड़े जो है नंबर्स हैं इनके 47% हैं, और ये जो हैं 37 है आउट ऑफ देयर 78 कैंडिडेट्स। इसके अलावा उन्होंने कहा है जी कि ये 2019 का जो फिगर था उसमें 45% फीमेल्स थी इनकी और जेंडर बेस्ड जो थे लोग वो थे। ग्रीन पार्टी के पास जो हैं 242 लोगों को उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन उनमें से जो 112 जो लोग हैं उनमें से जो है 44% यानी कि 112 जो हैं इसमें 252 में यानी 44% जो बनाते हैं ये फीमेल्स और जेंडर बेस्ड हैं। इसके अलावा लिबरल पार्टी जो है उसके अंदर 43% जो हैं लेडीज हैं और ये 39% जो हैं अप हैं फ्रॉम 2019, एंड सिमिलरली कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसके में भी 33% हैं और लास्ट टाइम से 2019 से ऊपर है उसमें उस वक्त जो थी 32% थी। तो ये वो कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो औरतें हैं और दूसरे जो हैं जेंडर बेस्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको अब जो है ज्यादा प्रेफरेंस जो है पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हैं, तो मेन स्ट्रीम के अंदर आपको अब जो है डिफरेंट डिफरेंट चेहरे जो है नजर आ सकते हैं। स्टैट्स कनाडा की एक रिपोर्ट है जी, और वो कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रेड सरप्लस है वो नीचे आया है बाय 778 मिलियन से जुलाई के महीने में. और वो कह रहे हैं कि हमने जब रिवाइज किया था ट्रेड सरप्लस जून के अंदर तो ये था 2.6 बिलियन. तो यानी जून से जुलाई आते आते चीजें जो हैं जरा थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ जा रही थी. टीडी बैंक के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जो रिसेंट नेगेटिव इकोनॉमिक जो हम देख रहे हैं ये सरप्राइज दे रहा है हमको. जो इकोनॉमिक ट्रेंड नेगेटिव की तरफ देख रहे हैं ये हमको काफी देख रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि थर्ड क्वार्टर में ये चीजें जो हैं पैच अप होना शुरू शायद हो जाएंगी, तो बेटर होना शुरू होंगी. थाईलैंड के अंदर
ये भी है ना कि लॉकडाउन वगैरह भी अगर जिस तरीके से ट्रेंड हमारा चल रहा है
जी चलता रहा है सही
नंबर्स जो हैं आज भी देखें आप
जी,
800 तक पहुंच गए. तो अगर ऐसे नंबर रहे तो फिर
अगर लॉकडाउन आ गए तो फिर मुश्किल आ जाएगी,
मगर अगर ना हुआ तो फिर यह सगत.
हाँ इसीलिए देखें ना, हाँ इसीलिए माजिद भाई इसीलिए सारे प्रोविंसेस सब लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में बोल रहे हैं. आप देखें कि कल मेरे बेटे के यूनिवर्सिटी से भी जो है वो उनको लेटर आया है कि हम जो हैं सिर्फ जो वैक्सीनेटेड कैंडिडेट्स हैं, और वो कहते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी की उन्होंने एक वेबसाइट का एक एरिया क्रिएट किया है, हर वो बच्चा जो आना चाहता है यूनिवर्सिटी वहां जाके अपना जो है वो उधर देगा, और
जो अगर इन स्कूल पढ़ना चाहता है
हाँ जो इन स्कूल पढ़ना चाहता है और अगर उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ होएगा तो उसको इजाजत नहीं मिलेगी.
हाँ, वो ऑनलाइन कर लेगा
फिर वो. तो इस तरह से जो है वो कर रहे हैं. तो काफी लोग जो है अब कॉशियस है, चाहते नहीं है लोग कि अब लॉकडाउन की तरफ जो है चीजें जाए. थाईलैंड के अंदर जनाब बहुत मैसिव जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसलिए कि वहां पे बैंकॉक के अंदर लोग जो है वो अब चाहते नहीं है कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो ज्यादा कंटिन्यू करें. उन्होंने अपने प्रेसिडेंट जो है प्रायुथ चैन ओचा उनको कहा है कि ना तो आपने पेंडेमिक के वक्त जो है वो ठीक से गुजारा है, ना तो आप इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ कर रहे हैं. तो वहां पे जो है काफी अच्छा माजिद भाई 66 मिलियन का ये कंट्री है और सिर्फ अभी तक 13% लोगों को वैक्सीनेशंस किए गए हैं. तो ये जो है
वेरी
वेरी सरप्राइजिंग. हाँ जी, क्योंकि एक जमाना आपको पता है ये जब थाईलैंड कह रहा था कि हमारे पास एक भी केस नहीं है कोविड 19 का, तो अब देखें जरा आप कितना स्लो चल रहे हैं. तो वो कह रहे हैं जी कि अब कंट्री के अंदर इस वक्त भी करंटली 1.2 मिलियन इन्फेक्शंस हैं और जब से ये शुरू हुआ है 12,000 से ऊपर डेथ्स हो चुकी हैं. तो प्रेसिडेंट बैठा क्या कर रहा है.
जो लोग टीवी देख रहे हैं और जो प्रोसेशन निकला हुआ उसको देखें तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट हैव मास्क ऑन.
हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली. बहुत सारे लोगों ने पहने भी नहीं हुए और बड़े गुथम गुथा भी हुए हैं यहाँ पे. तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल ही नहीं है जाहिर है.
दो सच्ची कैसे.
हाँ तो ऐसी भी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर बड़ा जोर है कि भाई तुमने वैक्सीनेशन ठीक से चलाई नहीं है. जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इवन इन ऑस्ट्रेलिया उन्होंने ठीक तरह से मामला चलाए नहीं है. तो ऐसे तो यहाँ पे जी है वो बड़े हैं, लोग स्ट्रीट्स पे हैं और आज तो उनका जो मेन स्ट्रीट था उसके ऊपर जो मेन स्क्वायर है उसके ऊपर काफी वो था. अच्छा जनाब आज बड़ी एक अजीब बात हुई. आपको पता है कि जिस वक्त नितिन याहू साहब थे और ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी तो बड़ी इनकी डिस्कशन हुई थी और अगेंस्ट द विशेज ऑफ द होल वर्ल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि हम तेल अवीव से अपना जो एम्बेसी है वो जेरूसलम के अंदर हम शिफ्ट करेंगे. अच्छा आज जो है अब जबकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज को टो करना चाहती है शायद करना चाहती है तो आज इसराइल ने बड़ा स्ट्रांग एक मैसेज दिया यूएसए को. उन्होंने कहा कि ये जो नई गवर्नमेंट है हमारी इनकी नफ्ताली बेनेट की इसराइल के अंदर उसको आप नुकसान पहुंचाएंगे अगर आपने यूएस एम्बेसी को जेरूसलम के अंदर जो है शिफ्ट किया. क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो बेनेटी साहब जो है इनकी कोलिशन गवर्नमेंट है, इसने और भी दूसरी पार्टियों के साथ भी मिलकर जो है बनाई है क्योंकि इनका मेन मकसद था नेतन्याहू को हराना. तो अब ये चाहते नहीं है कि इनकी जो अलायंस है इसमें से दूसरे लोग नाराज होकर निकल जाएं क्योंकि उसमें पहली बार जो है पीए का भी एक जो था रिप्रेजेंटेटिव आया इनकी गवर्नमेंट के अंदर. तो वो कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, अगर आपने ऐसा किया तो हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा. अच्छा बाइडन साहब की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से वैसे यही इशारे आए हैं कि हम शायद ये ना ही करें क्योंकि बाइडन साहब खुद जो हैं उनका जो एक बयान है वो ये है कि ही बिलीव्स इन टू स्टेट पॉलिसी. तो अगर टू स्टेट पॉलिसी पे आप बिलीव करेंगे तो फिर तो पैलेस्टीनियंस कहते हैं कि ये हमारा कैपिटल है ईस्ट जेरूसलम, तो उसमें तो फिर आपकी एम्बेसी नहीं आनी चाहिए है. तो अब ये देखेंगे कि इसके ऊपर अब क्या आएगा. अभी तक कोई बयान आया नहीं.
मेजर चेंज,
वेरी मेजर चेंज. हाँ जी, क्योंकि तेल अवीव का ऑफिस ऐसा था कि जिसके साथ अमेरिकन्स जो है पैलेस्टीनियंस के साथ बात करते थे वहां पे, तो पैलेस्टीनियंस का भी बड़ा कंसर्न है कि भाई आप ये ना करें. तो अब ये तो बड़ा मेजर पॉलिसी शिफ्ट है ना. तो अब ये अगर आएगा तो इसके ऊपर और जो डिटेल्स आएंगी फिर हम बताएंगे इसके ऊपर. अच्छा जी जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक रॉब साहब, वो आज पहुंचे हुए थे दिन के शुरू के हिस्से में, कतर में पहुंचे हुए थे और यहां पे उन्होंने जो है कतारी जो है फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी उनसे मुलाकात की है और जो उनके अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी उनसे भी मुलाकातें की हैं। असल में उसकी वजह यह है कि अभी भी बहुत सारे ब्रिटिश नेशनल्स जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर हैं और हमने कल भी बताया था कि मिस्टर ग्रॉस जो हैं वो जो गए हुए हैं इंग्लैंड से, जो स्पेशल उनके जो हैं एनवॉय हैं जो बोरिस जॉनसन साहब ने भेजे हैं, तो अब इनको भी इसलिए भेजा है, कतर इनको इसलिए भेजा है ताकि वो उनसे बात कर सकें कि भाई तुम्हारा इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर, तुम्हारे मुल्क में उनका जो है वो हेड ऑफिस है, तो तुम उनसे कहो कि हमारे जो नेशनल्स हैं उनको सेफ पैसेज दें अफगानिस्तान से। तो इसलिए आज जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं यहां पर और उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी हम जो है चाहते हैं कि ना सिर्फ ये, क्योंकि काबुल अब एयरपोर्ट की हालत खराब है ना, वो जो धमाके हुए हैं रिसेंटली, तो उन्होंने इनको कहा है, फॉरन मिनिस्टर को कहा है, अब्दुल रहमान अल थानी को कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि आप जो है अब हमारे साथ ये भी करें कि उनसे बात करें कि हम क्या अपनी कमर्शियल के बजाय कुछ और चार्टर प्लेन्स भी चला सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट बड़ा होता है, तो अगर चार्टर प्लेन्स छोटे हैं तो छोटे छोटे प्लेन्स में भी क्या हम अपने लोग वहां से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये आज उनकी उधर बड़ी जो है वो मेजर डिस्कशन,
मेन कंसर्न इज द सेफ पैसेज,
सेफ पैसेज, यस यस,
टू द एयरपोर्ट, टू
टू द एयरपोर्ट, वो चाहते हैं कि वहां से अपने तैयारों में उठा के इनिशियली कतर ही ले आए लोगों को और फिर कतर से जो है आगे आगे ले, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग वो भी है ना जो कि यूके नेशनल्स नहीं है, जिन्होंने सिर्फ सपोर्ट किया था यूके को की गवर्नमेंट को और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको, वही जो है इंटरप्रेटर्स एंड ऑल दैट, तो उनको भी ये लोग निकालना चाहते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर भी जनाब काफी चेंजेस आ रही हैं और यहां पे जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं आज अब्दुल फतेह अल सीसी, इन्होंने इनवाइट किया हुआ था अपने पास जॉर्डेनियन किंग जो हैं किंग अब्दुल्ला और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो हेड हैं प्रेसिडेंट जो हैं महमूद अब्बास उनको, और कायरो के अंदर इनकी काफी मेजर आज डिस्कशन हो रही थी और इन्होंने कहा जी कि वैसे तो ये जो इसराइल और हमास के बीच में बिकॉज ऑफ सीज फायर काफी एस्केलेशन कम हो गई है, लेकिन फिर भी हमको जो है रीजन के अंदर पीस के लिए काम करने की जरूरत है। अच्छा, इजिप्ट जो है ना माजिद भाई, कभी किसी जमाने में जैसे गमाल अब्दुल नासर वगैरह के जमाने में काफी इसका मेजर रोल होता था रीजन के अंदर, और उसके बाद फिर बिल्कुल ही इजिप्ट ने बिल्कुल इट सीम लाइक एज इफ इट इज डाइंग, यानी उसका कोई कंसर्न नहीं रहा। हस्नी मुबारक के जमाने में जरा वर्ल्ड लेवल पे काफी ये देखे जाते थे, लेकिन चूंकि उनके करप्शन के केसेस आ गए और इजिप्ट का रोल बहुत ही पीछे फिर चला गया इसमें अरब वर्ल्ड में, तो अब ये मेजर अलायंसेस बना रहे हैं वहां पे और ये इन सबको कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि हमको पैलेस्टाइन का मसला हल करना है, क्योंकि वही बात है वो आज जो इसराइल ने कहा है कि भाई ईस्ट जेरूसलम में यूएस अपनी ना करे, उस सिलसिले में भी इन्होंने कहा है कि भाई बिल्कुल, इसलिए कि ईस्ट जेरूसलम जो है वो इट इज पार्ट ऑफ पैलेस्टाइन,
सही,
तो पैलेस्टाइन के अंदर का अगर वो कैपिटल है तो फिर उसके लिए हमको रीजन के अंदर काम करना पड़ेगा और अपने पार्टनर्स को कहना पड़ेगा कि नहीं, ये टू स्टेट ही सोल्यूशन है इस जगह का, एक इसराइल और एक पैलेस्टाइन, और पैलेस्टाइन जो है उसका कैपिटल होगा जेरूसलम।
और दूसरी वजह ये भी है ना कि कई अरब ममालिक जो है
जी
वो जो है वो इसराइल से दोस्ती कर रहे हैं,
कर चुके हैं, कर चुके हैं
और कई कर रहे हैं इन द प्रोसेस राइट नाउ, तो वो अगर आप ईस्ट जेरूसलम को बना लेते हैं तो वो अपनी आवाम को किस तरह मुंह दिखाएंगे,
yes.
तो इसलिए भी उनको उनके भी बैकफायर हो सकता है ये बात, तो इसलिए भी वो चाहते होंगे कि भाई इसको जरा ठंडा ही रखो तो ज्यादा बेहतर है,
बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, तो बस इसीलिए जो है ये सारी चेंजेस मिडल ईस्ट के अंदर बस इसीलिए जो है। अच्छा जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक स्टोरी है और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक जो है वो यहाँ पे इन्होंने जो आज का ये आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा है जी कि ये जो हमारे बहुत सारे अब जो सिर्फ यूएस से ही नहीं बहुत सारे जो एलाइज हैं, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है ना सामने सारे इंटरनेशनल मीडिया में कि तालिबान जो है टेररिस्ट आउटफिट है, टेररिस्ट आउटफिट है, टेररिस्ट आउटफिट है, तो यूएस से जो है वो अब इनसे बात कर रहे हैं, तो अब मीडिया इनसे पूछ रहा है कि भाई तुम एक तरफ तो इनको टेररिस्ट कह रहे हो फिर बात भी कर, जैसे कल इंडिया में भी मुद्दा उठा था, राइट, तो अब क्या हो रहा है, यूएसए वालों ने अब कहा है कि ना सिर्फ हम, क्योंकि अब तो इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, राइट, कि अब वो कुछ ही दिनों में उधर गवर्नमेंट तालिबान की बन जाएगी, वो कहते हैं जी कि ना सिर्फ यूएसए बल्कि जो यूएसए के एलाइज हैं वो भी अब तालिबान के साथ बात कर रहे हैं, यानी जो कहते थे कि ये टेररिस्ट हैं, क्योंकि अभी भी जो अमरीका की टेररिस्ट वॉच लिस्ट है ना माजिद भाई, उसके ऊपर तालिबान का नाम है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का ये जो आर्टिकल है वो कहते हैं जी कि आप एक तो टेररिस्ट वॉच लिस्ट में इनका नाम है, फिर आप इनके साथ बात कर रहे हैं, फिर अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे एलाइज ने भी इनके साथ बात करना शुरू कर दी है। तो ये अब सारी चीज जो है ये किस तरफ जा रही है। अच्छा, यहां पे वो जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी है ना लॉयड ऑस्टन जो हैं, उन्होंने भी कन्फेस किया है। उन्होंने कहा कि देखें, हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं, हमको एक नैरो पैसेज, वही मुशरफ साहब वाली बात, जब अमरीका ने कहा कि हम तुम्हें भी तोरा बोरा बना देंगे, ये बंद करो अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ, उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक विंडो ओपन रखना चाहेंगे। आज वही बात ये भी कर रहे हैं ये जो लॉयड ऑस्टिन है कि नहीं, हम एक नैरो जो प्रायोरिटीज हैं, सेट ऑफ प्रायोरिटीज, वो इनके साथ ओपन रखना चाहते हैं ताकि तालिबान के साथ बात चलती रहे। इसके अलावा जो जनरल मार्क माइली हैं, चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो हैं, वो कहते हैं, उनका इंटरव्यू भी चल रहा था वहां पे, जहां जर्नलिस्टों के साथ ये लोग बैठे हुए थे सारे, तो उन्होंने कहा कि आप इसको क्या समझते हैं। तो जनरल माइली ने कहा, हम इनको टेररिस्ट समझते हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि अगर टेररिस्ट समझते हैं तो फिर बात हो सकती है, तो उन्होंने कहा हाँ, बात की पॉसिबिलिटी है उनके साथ। तो भाई अब आप क्या कहना चाह रहे हो यार, आप इतनी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हो। वो कह रहे हैं कि नैरो सेट ऑफ प्रायोरिटीज हम उनके साथ सेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनके साथ बातचीत हो सकती है, तो क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है, और आप उनके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? क्योंकि आज जो है तालिबान ने भी उनको कहा है कि हम दुनिया को कहते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट बने तो आप उसको रिकॉग्नाइज करें,
सही,
राइट, ताकि वहां पे एक जो है प्रॉपर सिस्टम से चला जा सके। तो ये आज बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे पढ़ सकते हैं। ये आज सारी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी लिखी हुई थी कि ये कैसे कैसे जो इनसे सवाल किए गए और इन्होंने कैसे उसके फिर जवाब दिए। गवर्नर जो हैं जी न्यूयॉर्क के और न्यू जर्सी के, उन्होंने दोनों अपनी स्टेट्स में, ये जो दोनों डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनके अंदर इन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी कह दिया है, क्योंकि ना तो वहां पे अब जो
सैलाब आया हुआ है, बहुत
सैलाब आया हुआ है, टॉर्नेडोज आ रहे हैं, और वो जो आइडा मैडम जो है वो पीछे जो छोड़कर गई हैं वो तबाहियां वो भी हैं। फिर लोगों के बहुत सारों के हाउस होल्ड्स में जो है पावर नहीं है, तो इसमें काफी लोगों की डेथ हो गई है न्यूयॉर्क के अंदर, न्यू जर्सी में, लुइजियाना में, मिसिसिपी और अलाबामा, फ्लोरिडा, इसमें जो है कोई तकरीबन 14-15 लोगों के डेथ्स जो हैं उनकी भी आई हुई हैं, और खासतौर पे न्यूयॉर्क सिटी तो बिल्कुल ही, पार्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी सबमर्ज्ड है बिल्कुल वाटर के अंदर, इवन न्यू जर्सी। हाँ जी, तो ये दोनों, इसीलिए इन दोनों इलाकों के अंदर जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है उन्होंने अनाउंस की हुई है। और लेकिन आज जो है बाइडेन साहब ने कहा है कि हम ये जो भी तबाहियां आई हैं आइडा की वजह से, उसके लिए हम जो है एड देंगे उन सारी स्टेट्स को ताकि वो कर सकें। कल हमने बताया था जी कि पंजशीर के ऊपर अभी लड़ाई चल रही है, ठीक है जी। तालिबान जो है दे आर नैरोइंग इन, लेकिन फिर भी वो जो हमने कल आपको बताया था कि लोकल लीडर जो है वहां पे अहमद मसूद, उसने वो सारे वो लोग वो जो थे बचे खुचे जो लोग थे ना, वो जो अफगान आर्मी के कुछ लोग थे, कुछ जो थे लोकल्स थे, कुछ और इस तरह के लोगों को मिला के अब अपनी एक वो जो है फौज सी बना ली है। तो अब ये कॉन्स्टेंटली जो है अहमद मसूद साहब उनके साथ फाइट कर रहे हैं, हालांकि तालिबान कह रहा है कि हमारे साथ बैठो, अहमद मसूद उसको मानने की वो मान नहीं रहा, वो कहता है नहीं, तालिबान की गवर्नमेंट हम नहीं मानते, हम यहां पर तालिबान का कब्जा नहीं होने देंगे। तो ये वहां पर जो है लड़ाइयां चल रही हैं, और ये जो मसूद साहब है, हमने आपको बताया था कि फॉर्मर मुजाहिदीन एक लीडर है, कमांडर है, उनके जो है ये बेटे हैं। तो अब दोनों साइड से ही जब जर्नलिस्ट बात करते हैं, मसूद कहता है कि नहीं, तालिबान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तालिबान वाले कहते हैं कि नहीं, मसूद जो है वो किसी चीज के ऊपर नहीं, वो अड़ा हुआ है वहां पे कि नहीं ये अब नहीं देंगे। तो अब देखेंगे अब इसको उसके ऊपर जो है, लेकिन दोनों साइडों ने आज क्लेम किया, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया इन दोनों ने आज क्लेम किया है। मसूद की पार्टी कहती है कि हमने बड़े हैवी कैजुअल्टीज की हैं तालिबान के, तालिबान कहते हैं उनको बड़े हैवी कैजुअल्टीज हमने की हैं। तो दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है,
पीछे ऑफकोर्स फॉरन हाथ भी है मसूद के पीछे
तो नहीं
कुछ कर
वो, वो वो लोग जो कि तालिबान को नहीं चाहते हैं वहां पे, इसलिए कि तालिबान का थोड़ा सा जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ है ना, तो अब वो चाहते नहीं है ये कि ये लोग आ जाएं। वैसे भी ये जो हैं उनके तालिबान जो हैं वो सुन्नी हैं, तो वो जो सुन्नी ब्लॉक है मुसलमानों का उनसे जरा क्लोज है, तो कुछ जाहिरा के लोगों का इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे कि ये लोग आए, तो ऐसे है। अच्छा जी, कल हमने आपको बताया था बड़े अफसोस की खबर ये कि कश्मीरी लीडर जो हैं सैयद अली शाह गिलानी साहब, उनकी डेथ हो गई है। लेकिन बहुत ही अजीब काम हुआ, उनका जो बेटा नईम है उसने आज डिटेल्स दी हैं। उसने कहा जी हम चाहते थे कि सुबह होती और हम जो है प्रॉपर बरियल अपने वालिद साहब को देते, हमारे रिश्तेदार आते हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो आते हैं, और पूरा एक फ्यूनरल जो है वो निकलता और उसमें प्रेयर्स होती हैं और फिर नमाज जनाजा होती है और उनको दफन किया जाता। वो कहते हैं जी रात में ही हमारे पास इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज के बंदे आ गए और एक तो उन्होंने हमसे बॉडी खींच ली बाप की, ले ली उन्होंने। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम इनको मस्जिद में लेके जा रहे हैं। तो कहते हैं जब वो बाप की बॉडी लेके भागे हैं मस्जिद लेके, तो हम भी उनके पीछे गए हैं। तो जब गए तो उन्होंने कहा जी बस जो तुम लोग दो चार हो, बस ये नमाज वमाज पढ़ो और अब इनको फौरन सुबह होने से पहले इनकी बॉडी जो है उसको करो, क्योंकि उनको डर था कि अगर दिन के वक्त प्रॉपर इनको फ्यूनरल दिया जाएगा तो कश्मीर को सारा उमड़ पड़ेगा, हजारों की तादाद में उमड़ पड़ेंगे लोग आएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ टेररिज्म ना हो जाए, गोली ना चल जाए कुछ। बहरहाल जी उस चीज के पीछे, वैसे भी कम्युनिकेशन वगैरह अभी भी बंद है कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने कहा जी ये तो जाहिर है कि इसके ऊपर जो है सारी दुनिया ने भी बड़ा कंडेम किया और पाकिस्तान ने तो किया ही किया कि एक बच्चे की आप के बाप की बॉडी कैसे आप उससे छीन सकते हैं ना। और तो इस तरह से जो है ये बड़ा आज उधर जो है अफसोस मनाया गया है। इंडिया के अंदर जनाब वो जो नाम चेंज करने के जो वो जो फोबिया है ना, ये मुसलमानों का है तो इसका नाम चेंज करो, तो ये है तो ये चेंज करो, वो चलता जा रहा है कॉन्स्टेंटली। आज असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा शर्मा जो हैं, उन्होंने एक वहां पे नेशनल पार्क था, एक नेशनल पार्क है असम के अंदर जिसका के नाम है राजीव गांधी के नाम के ऊपर, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, उसका जी नाम चेंज कर दिया। जाहिर है अब कांग्रेस ने तो उसका बड़ा बुरा मनाया, कांग्रेस ने कहा भाई कि तुम जैसा आदमी, शर्मा को कहा, ये इनके जो राजदीप सुरजेवाला हैं बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उसने कहा कि शर्मा साहब आप तो किसी जमाने में कहते थे कि राजीव गांधी आपका बड़ा आइडियल है और आप तो अपने पोलिटिकल करियर को क्रेडिट देते थे उसको, राजीव गांधी को, तो अब जो है अब क्या हुआ है, तुम क्यों इसको चेंज कर रहे हो, तो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बीजेपी की अब बोली बोल रहे हो और चीजों को डिस्ट्रॉय तुम लोग सारा कुछ कर रहे हो जो ओरिजिनल चीजें थी। तो शर्मा साहब ने आगे से बड़ा ही ठंडा जवाब दिया, उसने कहा नहीं नहीं, असम के अंदर किसी आदमी के नाम पे जो है नेशनल पार्क्स नहीं है, तो इसलिए हम लोकल्स को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं बस ये नेशनल पार्क है तो इसलिए जी जो है वो है। तो अब ये जो है इसमें जाहिर है कांग्रेस फिर बड़ी भड़की हुई है, क्योंकि उससे पहले भी राजीव गांधी के एक जगह का जो है वो नाम हटाया गया था उनका, तो वो है। अच्छा जी आज एक, अब पता नहीं है तो ये बड़े समझदार किस्म के साहब जो हैं, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह साहब, बहुत ही मतलब है स्मार्ट हैं, बहुत ही ज्यादा कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हैं। तो आज लेकिन जो इनका बयान आया वो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा जी वो कहते हैं जब से मोदी जी ऑफिस में आए हैं ना 2014 से, सुलझे हुए तो पता नहीं है कि नहीं लेकिन हैं बहुत मतलब शातिर हैं, 2014 से वो कहते हैं जी जब से मोदी जी आए हैं ना तो हमारे मुल्क में कोई मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ उस दिन से। तो मैं अपना जरा सर खुजा रही थी, मैंने कहा राजनाथ साहब सिंह तो साहब तो फिर आपने वो जो बालाकोट उसमें क्या नाम है पठानकोट में जो हुआ या जो दूसरी जगह पे हुआ तो आपने फिर उसको टेररिस्ट अटैक का नाम किया, पुलवामा में हुआ आपने उसको टेररिस्ट अटैक का नाम क्यों दिया फिर। कहते हैं ये तो कोई हुआ ही नहीं। अच्छा फिर कहते हैं फॉरगेट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, बाकी मुल्क में कोई भी कहीं पे भी नहीं हुआ, उनको पता चल गया कि मैंने शायद जो है ना जरा कुछ ज्यादा ही बोल गया। कहते हैं फॉरगेट कश्मीर और बाकी तो कहीं पे हुआ भी नहीं है और ये जो है हमने तो बड़ी चीजों को जो है संभाला है और बड़ी जबरदस्त तरीके से हम चल रहे हैं और ये और वो है और जो है टेररिस्टों को भी अब समझ आ गई है कि वो पंगे नहीं ले सकते हैं और हमारी ये बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है और आपको तो पता ही होना चाहिए कि हमने जब से हम आए हैं तो हम जो है मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम तो आपको बता ही रहे हैं बड़े अरसे से कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो हम तो जवानों के साथ भी हमारा बड़ा प्यार है, जो मिलिट्री के जवान हैं हम तो उनके साथ भी हमारा बड़ा प्यार है, तो हमने तो उनके साथ भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चीजें जो है वो चलाई हैं। जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो ओरोप का जो किस्सा था कि 1% 1 पेंशन वाला जो होता वो तो उन्होंने हल ही नहीं किया था 40 साल से, तो ये तो हम आए हैं तो हमने ये सारी चीजें जो हैं ये हल की हैं, तो उसकी वजह से जो है ये सारी चीजें जो है चल रही हैं। तो इसलिए अब सारों को पता चल गया है दुनिया को कि मोदी जी के रहते हुए टेररिज्म इस मुल्क में नहीं हो सकती है।
क्या बात है।
हाँ जी हाँ जी, आज उन्होंने जो है वो ये कहा। अच्छा जनाब अल जजीरा की आज एक रिपोर्ट है बड़ी इन्वेस्टिगेटिव और इसके मुताबिक जो है जब से ये कोविड शुरू हुआ है तो चाइल्ड पॉवर्टी बड़ी बढ़ गई है, बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन जाना शुरू हो गई हैं, तो एज अ रिजल्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाइल्ड लेबर तो बढ़ी गई है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके अंदर लड़कियां जो हैं सिर्फ वो पहले होती थी, अब लड़के भी बेशुमार जो हैं ट्रैफिक हो रहे हैं। अच्छा अब क्या होता है कि सिर्फ लड़कों को इन लड़कियों को नहीं लेके जाते, लड़कों को भी लेके जाते हैं, एक एक कमरे के मकान में उनको रखा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है और उनको जो है जरूरी नहीं है कि इंडिया से बाहर भेजा जाता है, इंडिया विद इन इंडिया ही उनको ये जो बड़े बड़े सेठों को बेच दिए जाते हैं वो बच्चे अपने, फिर वो काम करवाते हैं अपने फैक्ट्रियों में अपने और जगहों पे, उनको मारा पीटा जाता है, सिर्फ दाल चावल दी जाती है और वो कहते हैं कि इवन हैविंग सब्जी इज अ लग्जरी, हैविंग वेजिटेबल इज अ लग्जरी। तो उसके अंदर उन्होंने आज बहुत बड़ा डाटा जो है वो आज पब्लिश किया है। उन्होंने कहा कि हमने अल जजीरा की जो टीम है उन्होंने जो मिनिस्टर फॉर स्टेट है फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रमेश तीली कहते हैं हमने इनसे बात की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमने इस बहुत सारे बच्चे जो हैं इनको हमने रेस्क्यू किया है। वो कहते हैं जी 58,000 से ऊपर बच्चे तो हमने खाली अभी 2021 में किए हैं, इसके अलावा जो है ऐसे बहुत सारे बच्चों को हमने 50,000 के करीब और उससे पहले भी 47,000 के करीब हमने पिछले सालों में किए हैं। अच्छा अब जो ये जो लास्ट सेंसस हुआ था ना इंडिया में वो हुआ था 2011 में, उसके मुताबिक उसके बाद हुआ नहीं है अभी तक, आप देखें सेंसस नहीं हुआ अभी तक, तो उसके मुताबिक उस वक्त 2011 के मुताबिक ओवर 10 मिलियन बच्चा जो है लड़के और लड़कियां ये चाइल्ड लेबर में हैं और वहां से फिर वो ट्रैफिक हो जाते हैं। तो ये इस मसले की तरफ अभी तक इन्होंने देखा नहीं है, तो वो कह रहे हैं जी कि इसके ऊपर देखने की जरूरत है और वो कहते हैं जी कि यहां पे ज्यादातर जो बच्चे हैं बिहार जयपुर इस तरह जो लोअर उसके हैं। अच्छा वो कहते हैं जी हमने बात की है जो चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं प्रियांक कनुंगू को, तो उन्होंने कहा जी कि ये प्रॉब्लम कहां पे है, उन्होंने कहा जी प्रॉब्लम तो फैमिली से ही शुरू हो जाती है क्योंकि गुर्बत इतनी ज्यादा है कि कोई अगर उनको आप सोचें इंडियन 2 या 3 हजार रुपए भी देता है तो वो अपना बच्चा उसको दे देते हैं और वो जो लेके जाने वाले हैं ट्रैफिकर्स या लेबर में जो बच्चे को डाल देते हैं वो इनको कहते हैं कि जी हम तुम्हें जो है रोजगार तुम्हारे लग गया है अब तो हम तुम्हें पैसे भेजेंगे। अच्छा होता क्या है कि इन फैमिलीज में जो मर्द हैं वो बीड़ी के ऊपर लगे हुए हैं यानी कि वो तो ड्रग्स के ऊपर हैं, औरतें उनकी काम कर रही हैं, औरतें और लड़कियां उनको भी अब्यूज किया जाता है क्योंकि लोअर क्लास से हैं, रेप होती हैं, मारा पीटा जाता है, ऊपर से वो कह रहे हैं जो जुल्म ये है कि अब उनके लड़कों को भी उठा के लेके जाया जाता है और वो ट्रैफिक होते हैं। तो इट्स अ ह्यूज विशियस सर्कल जिसके के ऊपर इन्होंने आज ये बहुत बड़ी जो है ये आज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अल जजीरा ने की है। तो मुझे वो अमृता प्रीतम याद आ गई, आपको याद है उनकी वो फेमस वो जो पोएम थी अज उठ वो जो उन्होंने लिखी है वारिस शाह के लिए, अज उठ वारिस शाह दर्द मंदा दया दर्दा कदे एक पंजाब दी लड़की पता नहीं रोई सी की कितने, तो बड़ी खूबसूरत वो अमृता प्रीतम की वो लिखी हुई है क्योंकि उन्होंने ये जैसे क्योंकि उन्होंने वारिस शाह को कहा कि आप जो है उठ कब्रा विचों, इस तरह करके उन्होंने कहा कि तुम कब्र से उठो कि तुम देखो तुम्हारे पंजाब में क्या हो रहा है, कभी एक बच्ची के साथ कभी ज्यादती हुई थी तो तुम इतना चिल्ला गए थे तो अब तो तुम्हारे जो पंजाब की कितनी ही बच्चियों के साथ कितनी ही ज्यादतियां हो रही हैं तो तुम अब कब्र में चुप करके क्यों बैठे हुए हो। तो इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम बाय अमृता प्रीतम, तो वो मुझे आज फिर याद आई उनकी बड़ी खूबसूरती। अच्छा ये पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो उन्होंने आज इनॉग्रेट किया है सियालकोट खारियां मोटरवे प्रोजेक्ट और आज वो वहां पे थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो है पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसमें ये खोला जाएगा, सारे पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट लोन लेके नहीं करेगी। वो कहते हैं जी सिर्फ ईद के मौके पे आप सोचें कि जो सवात मोटरवे था उसके थ्रू 2.7 मिलियन गाड़ियां जो हैं टूरिज्म के लिए उधर से गुजरी हैं, तो अगर ये जो इतना बड़ा हब है सियालकोट इसके ऊपर अगर इतनी गाड़ियां इधर आ जाएंगी तो कितना ज्यादा बिजनेस बढ़ जाएगा और होएगा। और वो कहते हैं जी हम कर्जे ले लेके ये मोटरवेज बनाने के चक्कर में नहीं है, हम चाहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें आए तो वो हम इसमें कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी कि हमने जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उससे 3 times मोर जो है रोड्स अब बनाई हैं। यही जो है जनाब अभी हमने जो बताया है आपको यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब साहब जो कि कतर पहुंचे हुए थे दिन के शुरू के हिस्से में, ये अब शाम के हिस्से में पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तान में 2 day विजिट पे हैं और पाकिस्तान के साथ भी उनकी वही डिस्कशंस हैं कि जी हमारे जो वहां पे लोग फंसे हुए हैं उनके लिए सेफ पैसेज का आप वो करें और ये करें। अच्छा खुद देखो कितने बदमाश हैं, पाकिस्तान को जो है अभी तक अपनी रेड लिस्ट में रखा हुआ है, पाकिस्तान जो है रेड लिस्ट में है, एम्बर लिस्ट में नहीं है कि उसके ट्रेवलर्स आपके मुल्क में आ सकते हैं, हमसे हेल्प मांगने के लिए आ गया, मतलब हाउ क्या कहें यूरोपियंस के बारे में ना, यूरोपियंस इतने मतलब ये शेमलेस हैं ये लोग, अपने काम करवाने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं जी कि ये इमरान खान साहब के साथ जो है लास्ट मंथ में बात हुई थी, इमरान खान साहब ने फोन किया था इनको, जॉनसन साहब को, बल्कि उनका आया था फोन इनको, तो इमरान खान साहब ने बड़ा ये मुद्दा उठाया था कि तुमने क्यों पाकिस्तान को अभी तक रेड लिस्ट में रखा हुआ है भाई, तुम उसमें से निकालो इसको। तो उन्होंने कहा था जी ये हम देखेंगे, तो वो कहते हैं जी हम उन्हीं टॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं आपके साथ जी, बायलैटरल ट्रेड चाहते हैं और ये है और हमारी ट्रेडिशनल मोहब्बत है आपके साथ, तो ये है तो वो बंदे साढ़े छुड़ाओ जी, बंदे छुड़ाओ, प्यार मोहब्बत बहुत है, बंदे छुड़ाओ साढ़े हैं, असी थोड़ा कुछ नहीं करना लेकिन तुम साढ़े बंदे छुड़ाओ। तो ये आज जनाब वहां पे फॉरेन जो हमारे मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से उनसे मिलेंगे, ये अब फॉरेन ऑफिस ने जो है ये बताया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जी एक यूके का जो टीवी है स्काई न्यूज उसको एक इंटरव्यू दिया है कल, जो के दिखाया भी गया था उसके ऊपर, तो उसमें उन्होंने कहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये जो 20 साल वॉर होती रही है अफगानिस्तान में इसका कोई फायदा शायदा तो हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब यूएस फोर्सेज निकल गई हैं तो आप अफगानिस्तान को अबंडन कर दें, अगर आपने ऐसा किया तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक करेंगे। अच्छा ये जो इंटरव्यू था, इंटरव्यूअर था स्काई न्यूज का, उसने कहा तो आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया सारी जो है तालिबान के साथ दोस्तियां बनाएं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि आप तालिबान के साथ दोस्तियां बनाएं, लेकिन आप एंगेजमेंट तो कर सकते हैं उनके साथ, उनको एंगेज तो कर सकते हैं, उनके साथ बात तो कर सकते हैं, मतलब हाउ स्टूपिड अ क्वेश्चन इज दैट, यानी तुम यूके से हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बंदे उधर फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, तुम्हारा फॉरेन सेक्रेटरी जो है पाकिस्तान आया हुआ है और तुम कह रहे हो जी कि हम उनके साथ दोस्तियां बनाएं, अरे भाई बनानी ही पड़ेंगी दोस्तियां,
नो चॉइस
है आपके पास। तो वही उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ऑप्शन नहीं है आपके पास, ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जो है ये गलत आइडियाज लेने की कोशिश ना करें, आपको उनको एंगेज करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि जी जो है तालिबान ने तो अभी अनाउंसमेंट की थी कि हम अपना ओल्ड ओप्रेसिव स्टाइल जो है उसको हम अब खत्म कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अनदर वेरी यू नो आई थॉट अ स्ट्रेंज क्वेश्चन, लेकिन बहरहाल यूज़ पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वो कहते हैं, कहने लगे कि आपको नहीं लगता कि ये बड़ा एनकरेजिंग उनका जो है ये एक स्टेटमेंट है, तो अगर वो अपने पुराने जालिम तरीके
से, दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू वांट,
हाँ दिस इज व्हाट यू वांटेड ऑलवेज राइट, यूरोपियंस वांटेड, तो ये तो हमें लगता है कि बड़ा पॉजिटिव और एनकरेजिंग स्टेप है जो वो ले रहे हैं, तो ऐसे करके। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू था, अगर आप मिस कर गए हैं तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं फिर से। अच्छा ये अभी आरफा बाजी ने बताया है, वो जो है सिद्धार्थ शुक्ला यंग जो हैं इनकी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्टर जिनकी के डेथ हो गई थी, नहीं आमिर आप गलत तस्वीर दिखा रहे हैं, शुक्ला के साथ सलमान खान की तस्वीर है वो दिखाएं, तो सिद्धार्थ शुक्ला जो थे इन्होंने जीती भी थी जो है वो बिग बॉस की जो करते हैं सलमान खान, वो जीती थी, तो सलमान खान को बहुत ही ज्यादा दुख लगा, उन्होंने कहा जी कि आप बहुत जल्दी चले गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो लोग हैं जैसे कि अक्षय कुमार, वरुण धवन, आलिया भट्ट और शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, सब ने बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया इनकी डेथ के ऊपर, और इनकी गर्लफ्रेंड थी या कह सकते हैं आप बहुत क्लोज फ्रेंड थी शहनाज गिल, तो वो उनको बहुत शॉक लगा, बल्कि शहनाज गिल के जो वालिद साहब हैं उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है, बिकॉज दे वर अबाउट टू गेट मैरिड, ये इसको बोलने वाली थी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, तो इस तरह से है, लेकिन इनको हार्ट अटैक हुआ था एंड ही इज जस्ट 40
वेरी स्ट्रेंज,
हाँ जी हाँ जी, लेकिन वही है कि वो आज डॉक्टर्स ने कहा है कि हम अभी तो पूरी डिटेल्स नहीं आई हैं, बट बैड लाइफ स्टाइल्स तो उसके ऊपर है। अच्छा जी कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर भी एक हैं जो कि अब आते हैं जी कॉमेडी शो के ऊपर जिसको कि जज करती है फराह खान, तो ये जो हैं इनको भी बहुत ज्यादा सीवियर रिलैप्स हो गया था और इनको जो है अब हॉस्पिटल के अंदर जो है दाखिल किया गया है, और इनकी मदर ने फिर आज आप बताया डॉक्टर्स को और मीडिया को कि मेरे बेटे को ड्रग एब्यूज का प्रॉब्लम है और काफी सारी इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, तो इनके लिए भी अब लोग दुआ कर रहे हैं कि ये बच जाए, लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये जो ड्रग्स आ गई हैं और फिर इनके जो काम से रिलेटेड भी जो टेंशन हैं वो स्ट्रेस बहुत है, तो उसकी वजह से इनकी जाने जो है यंग लड़कों की जो है वो जा, इनकी जान अभी गई नहीं है बट ही इज इन अ वेरी बैड शेप इन अ हॉस्पिटल, तो वहां पे हैं। अच्छा जी आपको पता ही है कि कबीर खान साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं इसके हिंदुस्तान के, ये जितनी भी टाइगर जिंदा है टाइप फिल्में जो हैं सलमान खान के साथ ये कबीर खान बनाते हैं, तो इनका आज एक इंटरव्यू सामने आया है क्योंकि एक जो है एक सीरियल आने वाला है द एम्पायर जो के बना रही हैं मिताक्षारा मितक्षरा कुमार, मितक्षरा कुमार जो है वो बना रही हैं। मितक्षरा कुमार से किसी ने पूछा है कि ये जो एम्पायर के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी आ गई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि कबीर खान ने भी बड़ा बुरा मनाया है, तो वो क्या है? तो उसने, मितक्षरा ने तो कहा है कि जी जो कुछ कबीर खान ने कहा है वो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, वो सही उसने कहा होगा। तो ये अच्छा, अब इसके पीछे कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि कबीर खान थोड़े दिन पहले जो है बॉलीवुड हंगामा को इंटरव्यू दे रहे थे, इनसे पूछा गया कि तुम क्यों इतना ज्यादा जो मुगल एम्पायर थी इंडिया की उसको बड़ा तुम वाह 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 करते रहते हो। तो कबीर खान ने कहा कि मुझे आज तक समझ ही नहीं आई है कि मुगल्स ने इंडिया के अंदर आके हिंदुस्तान में ऐसी क्या हाहाकार या ऐसी क्या तबाही मचाई है कि तुम सारे के सारे मुगल्स के अंगेंस्ट हुए हुए हो, बल्कि मुगल्स का तो बड़ा प्रॉपर रोल था इस मुल्क की प्रोग्रेस के अंदर। तुम जब भी फिल्में बनाते हो या ड्रामे बनाते हो इनको विलन्स पेंट करते हो, तो कोई रीजन दो उसके बारे में कि तुम मुगल्स को विलन क्यों समझते हो भाई, क्योंकि हम तो इनको नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर जब हम इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें तो ये बड़े अच्छे रूलर्स लगते हैं और हिंदुस्तान के अंदर तो बड़ी प्रोग्रेस आई, बल्कि वो कहते हैं जी कि हिंदुस्तान की तो हिस्ट्री जो है इनके ऊपर जो है वो बहुत सारी वो डिपेंड करती है, तो तुमने बस एक स्टीरियोटाइप्स, प्री कंसीव्ड स्टीरियोटाइप्स हैं कि चूंकि ये मुसलमान हुक्मरान थे और जितने भी मुसलमान हुक्मरान थे इंडिया के उन सबको तुम बैड लाइट में दिखाते हो, एंड दैट रियली इज डिस्टर्बिंग एंड इट डिस्टर्ब्स मी एंड आई गेट वेरी वेरी अपसेट अबाउट इट, सो यू नीड टू गेट योर परसेप्शंस राइट। तो उसके ऊपर जो है वो फिर आज बोल रही थी मितक्षरा कुमार, जो है वो कह रही थी कि हाँ अगर उसने कहा है तो फिर उसके पास कुछ तो सच्चाई होगी। नसीरुद्दीन शाह साहब जो है जी, उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया के मुसलमान खुश हो रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में आ गया है, तो उनको फिर से सोचना चाहिए कि कौन सा ब्रांड ऑफ इस्लाम जो है वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रांड ऑफ इस्लाम इंडियन मुस्लिम्स फॉलो करते हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब मैं सोच रही थी कि भाई इस्लाम तो इस्लाम है, इस्लाम में तो कोई ब्रांड है नहीं, अब अगर आपने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, मुल्ला उमर ने अपना बनाया हुआ है, किसी और ने अपना बनाया हुआ है, तो ये तो आपका प्रॉब्लम है ना, बट इस्लाम तो इस्लाम ही है।
Exactly.
हाँ जी, तो वो कहते हैं जी नहीं, जो इंडियन मुस्लिम्स का जो ब्रांड ऑफ इस्लाम है वो दूसरे लोगों से डिफरेंट है, तो अब तुमको सोचना पड़ेगा कि तुमको मिडीवल ईयर्स में रहना है या कि मॉडर्न एज में रहना है, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो डिफरेंट है और मैं चाहूंगा कि इंडिया के मुसलमान जो है उसी इस्लाम को फॉलो करें। और फिर उन्होंने बड़ी मिर्जा गालिब की एक पोएम शोएम भी पढ़ी वहां पे बातचीत के दौरान। एंड जनाब, वी आर रीचिंग राइट एट द एंड ऑफ द न्यूज, इनफैक्ट वी हैव रीच्ड राइट एट द एंड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ही हैज बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल, और ये मैच हो रहा था पोर्चुगल का और पोर्चुगल ने डिफीट किया आयरलैंड को 2-1 से वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के अंदर। तो ये जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं ना, उनके फॉरवर्ड हैं, तो इन्होंने जनाब अब जो रिकॉर्ड था ईरान के जो अली दाई हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है, क्योंकि उसने बनाए थे 109 गोल्स और इन्होंने अब बना लिए हैं 111 जो है वो इंटरनेशनल गोल्स बनाए हैं। तो जनाब ये अब जो है लीड कर रहे हैं इसके अंदर। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया एंड इंग्लैंड, फोर्थ टेस्ट इनका चल रहा है और आज पहले ही दिन इंडिया की पूरी टीम को बॉल आउट कर दिया गया है 191 पे, और जो है लेकिन इसमें जब इंडिया की भी बारी आई तो बुमराह ने भी उनके जो है रोरी बर्न्स उनको अब आउट कर दिया है, तो अब देखने में आएगा आगे कैसे चलेगा। लेकिन क्रिस वोक्स जो है उसने 4 विकेट्स ली थी और ओली रॉबिन्सन जो है उसने 3 ली थी जी विकेट्स।
देयर यू गो,
तो ऐसे है।
और ये थी हमारी आज की खबरें और पके की खबरें। कल जुम्मा है साहब, जुम्मे को फिर आएंगे हम आपके साथ और 6:45 इंशाल्लाह ताला हमारी आपकी मुलाकात होगी। अभी आपने कहीं जाना नहीं है, अभी आपने कहीं जाना, क्योंकि जनाब लियाकत मलिक साहब बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम ट्रिब्यूट टू मास्टर इनायत हुसैन आज पेश करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे गाने इनके, इनायत हुसैन साहब के। तो आज आपके थोड़े से वक्फे के फौरी बाद हम आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच,
थैंक यू मच, विल सी यू टुमारो
इंशाल्लाह। एंड शाजी जी एंड आमिर की आज छुट्टी, घर जा रहे हैं जी, और कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, तो विल बी राइट बैक। एंड राइट आफ्टर दैट जनाब लियाकत मलिक साहब एंड भूली बिसरी यादें ट्रिब्यूट टू मास्टर इनायत हुसैन।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो। क्या आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है? अगर हाँ तो ये वक्त है कि आप घर पर कोलोन कैंसर का टेस्ट लें, और ये टेस्ट बहुत आसान है। आप अपना सैंपल लेकर मेल के जरिए भेज दें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है। आप फौरन अपने फैमिली डॉक्टर से किट हासिल करने के लिए रابطہ कीजिए और www.ontario.ca/colon-cancer-check पर जाकर मजीद मालूम हासिल कीजिए। ऑन्टेरियो गवर्नमेंट की तरफ से अदायगी की गई, पेड फॉर बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो।
Become a medical doctor
and a brand new grand gym. Mazeed malumat ke liye call karein 519-740-6855, 519-740-6855.
हर साल अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन सादिकाबाद रहीम यार खान पाकिस्तान में एक ही जगह पर 150 से जायद यतीम और नादिर बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम तश्कील देता है। इस साल भी अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनाकिद करने जा रहा है, जो नवंबर दिसंबर में मुनाकिद किया जाएगा। एक बच्ची की रुख्सती पर तकरीबन $1,000 का खर्चा आता है। आपकी दी हुई डोनेशन इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में इस्तेमाल होगी और टैक्स रसीद भी फराहम की जाएगी। आपसे इल्तिजा और अपील है कि इस नेक काम में दिल खोल कर मदद करें। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 416-471-9636 या इनकी वेबसाइट पे विजिट करें www.awfca.org। अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन।
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन आज मेरा बहाना नहीं चल सका। मैंने ये बहाना किया था ज़ीशान के साथ और आमिर के साथ कि मेरे काफ़ी काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मैं इस थर्सडे को प्रोग्राम नहीं कर सकता। तो आप यूं कीजिएगा कि कोई मेरा पुराना प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर कर दीजिएगा। लेकिन ये वो जवान लड़के ऐसे हैं कि उन्होंने मेरे कनपट्टी पे जो है जैसे गन नहीं रख देते कि नहीं ये प्रोग्राम जो है ये दोबारा चलने वाला प्रोग्राम नहीं है, ये हम फ्रेश ही प्रोग्राम चलाएंगे। तो अब ये जवान लड़के थे, अब मैं बुजुर्ग इनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, तो मैं हाजिर हो गया। तो अगर प्रोग्राम के अंदर मुझे कोई गलती हो जाए, मुझे कोई कोताही हो जाए मुझसे, तो ये सारा जो सिलसिला होगा ये ज़ीशान और आमिर के खाते में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर मास्टर अनायत हुसैन। मास्टर अनायत हुसैन 1916 में लाहौर में पैदा हुए और उन्होंने कोलंबिया जो पिक्चर्स है उसमें हिज मास्टर वॉइस में भी काम किया। ये पटियाला घराने के जो बड़े गुलाम अली खान थे उनके शागिर्द भी रहे, बेगम रोशन आरा, मलका पुखराज और जीनत बेगम के साथ भी काम किया। बतौर म्यूजिक डायरेक्टर ये इन्होंने हिंदुस्तान की एक फिल्म कमली के लिए 1946 में म्यूजिक दिया। उसके बाद उन्होंने लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ज्वाइन कर ली और पहली फिल्म जो थी इनकी 1949 में फिल्म हचकोले वो फिल्म थी जिसमें सुधीर साहब शाहजमान, जिनका नाम असली नाम शाहजमान था, फिल्मी नाम सुधीर था, उनकी ये पहली फिल्म थी। उसके बाद फिल्म गुमनाम में मास्टर नैसन साहब ने म्यूजिक दिया। इस फिल्म का एक गाना है, पायल में गीत हैं छम छम के, आवाज है इकबाल बानो, गीतकार हैं सैफुद्दीन सैफ और एक्ट्रेस हैं सबिया खानम साहिबा। देखिए और सुनिए।
पायल में गीत है छम छम के, कुलाख चले री पूरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के, कुलाख चले री पूरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। पायल में गीत है चम चम के, लाख चलेरी पूरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के। मैंने भी किया था प्यार कभी, थम थम के पायल में गीत है चम चम के, लाख चलेरी पूरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के।
जी नाजरीन, उसके बाद एक गाना जो है वो इकबाल बानो की आवाज में फिल्म कातिल में, उल्फत की नई मंजिल को चला तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में, शायर थे कपिल शफाई। और उस वक्त जो सबिया खानम थी वो नंबर वन एक्ट्रेस थी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, उन पे ये पिक्चराइज हुआ। इस गाने की खसूसियत ये थी कि एक बहुत बड़े उस्ताद अमीर खान साहब, वो हिंदो पाक के बहुत मशहूर जो उस्ताद थे गायकी के, तो वो जब लाहौर तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा, यार ये मास्टर अनायत हुसैन कौन है? तो किसी ने कहा, जी ये नए हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा, यार मैंने इस बंदे से मिलना है, इस बंदे से मैंने जरूर मिलना है। तो सब ने हैरानगी कहा कि यार ये नया या लड़का है, नया आदमी है, इसके साथ क्या ये बात करेंगे। तो अमीर खान साहब से मुलाकात कराई गई मास्टर नैसन की, तो उन्होंने कहा, यार ये कहां से आपने ये म्यूजिक ले लिया, मेरी तो इतनी अठनियां जाया करा दी तुमने इन म्यूजिक सुनने के लिए। मैंने पता नहीं कितनी जगह पे अपनी एक एक अठन्नी जो है वो जाया की, इतनी दफा मैंने इसको सुना कि आपने कहां से ये म्यूजिक लेके आ गए। तो ये कितना बड़ा एजाज है एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए कि एक उस्ताद जो है उनके म्यूजिक को इतना पसंद करे। तो ये गाना देखते हैं और सुनते हैं, उल्फत की नई मंजिल को चला तू बाहें डाल के बाहों में। देखिए।
बाहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में, उल्फत की नई मंजिल
किया इस जुर्म को भी शामिल कर लो मेरे मासूम गुनाहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में हम भी तो पड़े हैं राहों में उल्फत की नई मंजिल को चला जब चांदनी रातों में तूने खुद हमसे किया वफा फिर आज है क्यों हम बेगाने तेरी बेरहम निगाहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में हम भी तो पड़े हैं राहों में उल्फत की नई मंजिल को चला
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.